ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का आज के स्पेशल संडे टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज के जीवन के इस दौर में हम सभी अनेक परिस्थितियों का सामना करते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमारा मन उदास,
जी
परेशान, निराश हो जाता है। तो आज की जो हमारी ये चर्चा है वो इसी टॉपिक पे है कि कैसे हम जीवन में आने वाली अनेक परिस्थितियों का सामना उमंग उत्साह के साथ करें, ताकि ये जो जीवन है इसको हम और बेहतरीन तरीके से जी सकें। तो इसके लिए आज हमारे बीच में आदरणीय सौरभा दीदी जी उपस्थित हैं, और दीदी आप मणिपाल से आज हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप पिछले 30 से भी ज्यादा वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अनेक प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज कराया नेशनल और स्टेट लेवल पे। इसमें की कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं इनलाइटमेंट थ्रू एंटरटेनमेंट जैसे, और स्पिरिचुअल मैजिक शोज, मैजिकल जर्नी टूवर्ड्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसे अनेक प्रोग्राम को लॉन्च किया, ऑर्गेनाइज किया, और उसके माध्यम से अनेक जनों को जीवन जीने की एक नई राह भी दिखाई। तो दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे एजुकेशन बैंक स्पेशल संडे टॉक में। हम चाहते हैं आप आएं और हमें बताएं कि कैसे जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करते हुए हम अपने को उमंग उत्साह में रख सकें और इस जीवन को बहुत ही सुंदर और बेहतरीन बना सकें। ओवर टू यू। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू सो मच बेन। आपने हमें कुछ अच्छे विषय मूड रिपेयर किट के बारे में सबके साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए आपने अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों को भी नमस्कार। ओम शांति। और अभी हम मूड रिपेयर किट के बारे में हम कुछ बातें सुनेंगे। जस्ट अ मिनट। तो सभी दर्शकों को पुनः नमस्कार। और आज हम एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है मूड रिपेयर किट के बारे में हम सुनेंगे। आपने अब तक तो बहुत वैरायटी किट्स के बारे में तो सुना ही होगा। टूल किट्स है ना, जो भी आप गैजेट्स खरीदते हैं या कार के लिए है या कोई भी व्हीकल का टूल किट, रिपेयर टूल किट तो होता ही है। तो जब भी अगर कोई जरूरत है तो हम खुद ही छोटा मोटा रिपेयर्स तो हम खुद ही कर सके, तो इसीलिए हर एक अपने घर में टूल किट तो रखते ही है ना। नहीं तो हर बार हमें टेक्नीशियन के पास भागना पड़ता है। तो इससे तो अच्छा घर में ही कोई कोई टूल किट हो तो इजी हो जाता है। तो लेकिन क्या हमारे पास अपना मूड रिपेयर करने का भी कोई किट है? कभी ऐसा सुना था आपने आज तक? तो आज हम इस विषय के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले कल ही क्रिसमस था और आज हम उसी के मूड में है। सभी लोग, सभी पूरी दुनिया में क्रिसमस की बहुत अच्छा माहौल है, सब लोग खुश है। तो इसी खुशी में हम आपको भी बधाइयां देना चाहते हैं। तो लेकिन क्या एक दिन के लिए हम खुश रहना चाहते हैं या हमेशा के लिए खुश रहना चाहते हैं? है ना, वी ऑलवेज वॉन्ट टू बी इन गुड मूड। तो हमेशा खुश रहना, आनंद में रहना, अच्छे मूड में रहना हर एक पसंद करता है। लेकिन लेकिन होता क्या है, ऐसा हर दिन नहीं रहता, हर बार ऐसा हमारा मूड ऐसा ठीक नहीं रहता। कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाता है या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाते हैं तो हमारा मूड बदलता रहता। कभी लो होता, कभी हाई होता, कभी हम सैड हो जाते, कभी डिप्रेस्ड फील करते या कभी बहुत अच्छा फील करते हैं। तो क्यों ऐसा हमारा मूड बार बार बदलता है? वैसे तो सब खुश रहना ही चाहते हैं, कोई भी लो फील करना तो नहीं चाहते। तो फिर लोग यूजुअली सोचते हैं कि अच्छा मूड हमेशा अगर हमारी बनी रहे तो उसके लिए क्या-क्या चीजें जरूरत है। कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत पैसा होगा तो हम बहुत खुश रह सकेंगे, क्योंकि जो चीज हमें चाहिए वो सब हम खरीद कर सकते हैं, तो इसीलिए पैसा बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। या दूसरा सोचते हैं अगर मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ तो लोग मुझे पसंद करेंगे, तो मुझे अप्रिशिएट करेंगे या मुझे लाइक करेंगे, तो इसीलिए भी लोग सोचते हैं कि मैं हमेशा फिट रहूं, ब्यूटीफुल रहूं, तो इसके लिए भी बहुत कोशिश करते हैं, है ना। तो लोग सोचते हैं कि ब्यूटीफुल जो है वही बहुत अच्छे मूड में रह सकते, ऐसा भी कई लोगों का मानना है। और फिर कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास केवल पैसे से क्या होता, हमारे पास पोजीशन भी चाहिए, बहुत अच्छा पावर भी चाहिए ताकि हम जो चाहते हैं ऐसे हम कर सके, तो लोग ऐसे सोचते हैं। तो फिर कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी होना चाहिए तभी हम बहुत रिच कहलाए जाएंगे और लोग हमें बहुत पसंद करेंगे और लोग हमें लाइक करेंगे तो हम बहुत अच्छे मूड में रह सकते हैं, ऐसे भी कुछ लोगों का मानना है। और कई लोग मानते हैं कि हमारा जो फैमिली है या हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे हमारे सारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो, या हमारे साथ जो पार्टनर्स है या हमें जरा जो फैमिली मेंबर्स है वो बहुत अच्छे हो, हमारे संबंध अच्छे हो, तब भी हम अच्छे मूड में रह सकते हैं। लेकिन आप बताइए इन सब में क्या-क्या चीजें आपको जरूरी लगता है आपको अच्छे मूड में रहने के लिए, क्या ये सब आपके कंट्रोल में है? नहीं है ना, हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, तो फिर हम कैसे अपने मूड को कंट्रोल कर सके, अपने मूड को हम खुद ही कैसे रिपेयर कर सके? तो मूड मीन्स हाउ यू फील एट द प्रेजेंट टाइम, इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द स्टेट ऑफ योर माइंड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पैटर्न और द क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएटेड इन द माइंड। तो मूड माना क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मूड माना अभी फिलहाल मैं कैसा फील कर रही हूँ, तो वो किस पर डिपेंड होता है, क्या एक्सटर्नल सिचुएशंस पर जो मेरे आसपास में जो दृश्य मैं देख रही हूँ क्या उस पर डिपेंड करता है? नहीं, जो मेरे मन में विचार चल रहे हैं, जिस क्वालिटी के विचार चल रहे हैं उस पर मेरा मूड आधारित होता है या उस पर डिपेंडेंट होता है। तो अभी थॉट्स तो मैं खुद ही तो क्रिएट करती हूँ, है ना। अगर मेरे आसपास में बहुत अच्छा माहौल है, पार्टी चल रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन अगर मेरा मन उदास है या मेरे को किसी ने गाली दे दिया या कुछ कह दिया, कुछ कमेंट कर दिया मुझ पर, तो लोग यूजुअली क्या हो जाते, बहुत लो फील करते हैं उस टाइम, फील करते कि अरे ये क्यों ऐसा बोला, ऐसा उनको बोलना नहीं चाहिए था, तो ऐसा करके वो मायूस हो जाते, उदास हो जाते हैं। तो आसपास का जो माहौल है वो बहुत अच्छा माहौल है, पार्टी का है या आनंद का है या खुशियों का माहौल है, अच्छा पार्टी, म्यूजिक, लाइटिंग, खाना, अच्छे फ्रेंड्स, सब कुछ है, लेकिन मेरा मन उदास क्यों है? क्योंकि मैं नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रही, क्योंकि मेरे मन में कोई अच्छे विचार नहीं चल रहा है उस टाइम, तो इसीलिए मैं उदास हूँ। तो इसीलिए बाहर सिचुएशंस पर ब्लेम करने के बजाय मैं अपने ही थॉट्स पर क्यों ना ज्यादा फोकस करूं और उसको ही चेंज करने का कोशिश मैं करूं। तो मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताना चाहती हूँ, आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको किसी ने रसगुल्ला ऑफर किया तो आप कैसे फील करेंगे, कि फील करेंगे हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है और बहुत स्वीट है, बहुत डिलीशियस है ना। आप उसको खाते खाते उसका बहुत स्वाद आप अच्छा अनुभव करते हैं। लेकिन समझ लीजिए दूसरा एक सिचुएशन है जहां पर आपको एक बहुत बड़ा काम दिया गया है और आपको टाइम भी दिया है, टारगेट टाइम भी दिया है, उससे पहले आपको फिनिश करना है, लेकिन आपका ऐसा हो गया कि आप उससे पहले फिनिश नहीं कर पाए और अभी आपको उसका रिपोर्ट सीनियर्स को सुनाना है। अभी मीटिंग से पहले, माना सुनाने से पहले, अगर आपको हम रसगुल्ला ऑफर करें तो आप क्या फील करेंगे? तो पहले तो यूजुअली कहते हैं कि नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हमारा अभी क्या मन है, माना अभी एक एंजाइटी चल रहा होता कि अभी पता नहीं हमारे सीनियर्स या टॉप मैनेजमेंट क्या कहेंगे, क्योंकि हमारा इतना अच्छा जो टारगेट हमने अचीव नहीं किया या टाइम पर डेडलाइन से पहले हम पूरा नहीं कर पाए अपना काम, तो फिर अभी क्या कहेंगे टॉप मैनेजमेंट हमें, वही एंजाइटी में रहेंगे। तो फिर जो रसगुल्ला हम देंगे तो यूजुअली लोग क्या करते, ना ही कहते, रिफ्यूज ही करते। लेकिन अगर हम थोड़ा आपको फोर्स करें और प्रेशराइज करें आपको खाने के लिए, तो आप समझ लीजिए आपने खा भी लिया। फिर हम अगर आपसे पूछे आपको कैसा लग रहा है, उसका क्या टेस्ट, तो क्या बताएंगे आप? तो क्या बताएंगे? तो आपको शायद ये फील भी नहीं कर पाएंगे कि आपने व्हाइट रसगुल्ला खाया या ब्लैक जामुन खाया, शायद ये डिफरेंस भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका मन पूरा उस रिपोर्ट पर ही बिजी था। एक्चुअली देखे तो आपने वही रसगुल्ला खाया जहां से लास्ट टाइम भी लाया था, वही रसगुल्ला खाया और वही हाथ से वही मुंह में रखा, वही टांग है, वही जीभ, माने वही जीभ है, वही दांत है, वही मुंह है, उसी पेट के अंदर गया। और अगर आप देखें तो सारे प्रोसेस जो है वो सेम टू सेम है, एग्जैक्टली सेम है। लेकिन पहली बारी जो आपको बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा टेस्ट उसका लगा रसगुल्ला का, और अभी वो इतना आपको टेस्टी नहीं लग रहा है। कारण क्यों? जबकि सारे प्रोसेस सेम है, अभी आपको टेस्टी नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपका मन अभी रसगुल्ला पर नहीं है, आपके विचार रसगुल्ला पर नहीं है, आपके मन में एक भी विचार रसगुल्ला पर नहीं चल रहा है। आपके सारे विचार जो रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है उसके ऊपर ही चल रहा है, इसीलिए आपको एंजाइटी है, या आपका मन रसगुल्ला पर नहीं है इसीलिए आपको रसगुल्ला का टेस्ट पता नहीं चल रहा। अभी तीसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे कि तीसरा सिचुएशन जहाँ पे कई बार हमें ऐसा ड्रीम्स में भी, सपनों में भी आता है कि हम रसगुल्ला खाते, बहुत अच्छा उसका टेस्ट हम फील कर रहे होते, लेकिन सडनली कोई आके हमें जगा देता है तो तभी हम रियलाइज करते इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, हमने एक्चुअली रसगुल्ला नहीं खाया, वो सपने में हमने खाया। फिजिकली रसगुल्ला वॉज नॉट एट ऑल प्रेजेंट, लेकिन फिर भी हमें उसका स्वाद आया, उसका टेस्ट आया। क्यों? क्योंकि हम रसगुल्ला के बारे में ही सोच रहे थे, इसीलिए रसगुल्ला के बगैर भी हमें टेस्ट आया, है ना। अगर इन तीनों सिचुएशंस को अगर हम एक बार और देखें, पहले सिचुएशन में रसगुल्ला हमारे सामने था, मना हम खा रहे थे और विचार भी उसके ऊपर चल रहा था, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा टेस्ट मिला हम। और सेकेंड सिचुएशन में रसगुल्ला था लेकिन विचार उसके ऊपर नहीं था, इसीलिए हमें रसगुल्ला का टेस्ट पता नहीं चला। और तीसरे सिचुएशन में रसगुल्ला तो था ही नहीं लेकिन फिर भी विचार उसके ऊपर चल रहा था, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा टेस्ट फील हुआ। तो इसका मतलब क्या है? तो आपके अनुभव के लिए रसगुल्ला का ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है या थॉट्स का, क्या कहेंगे आप? अगर इन तीनों सिचुएशंस को अच्छी तरह से अगर हम एनालाइज करें तो हमें क्या समझ में आता है? प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्सपीरियंसेस, इनफैक्ट थॉट्स आर द बेसिस ऑफ ऑल माई एक्सपीरियंसेस। माना कोई एक चीज है या वस्तु है, उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस मेरे अनुभव के लिए आधार नहीं है, मेरा अनुभव केवल मेरे विचारों के आधार पर ही है। मेरा जो अनुभव है, जो भी हमें अनुभव होता है, वो हमारे विचारों के कारण अनुभव होता है ना। तो उसके लिए रसगुल्ला का ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं, मे बी सम 5 to 10%, लेकिन 90% आपका अनुभव जो था वो आपके ही विचारों के कारण था, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आपको जिस प्रकार का अनुभव चाहिए, उस प्रकार के विचार अगर आपके मन में विचार आप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आप उस प्रकार का अनुभव कर सकते हैं, है ना। अभी मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए कि अगर आप आपके मन में कोई विचार करने के लिए आपको किसी का परमिशन चाहिए? किसी का परमिशन चाहिए नहीं ना, या आपको कोई एक सिचुएशन होने के लिए इंतजार करना है? नहीं। तो कहने का मतलब आपको विचार करने का 100% फ्रीडम है। जो विचार आप चाहते हैं, उस प्रकार के विचार करने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता, 100% फ्रीडम है। लेकिन जो मेरे मन में आता है वो सब बोल नहीं पाते कई बार, जो मैं करना चाहती हूँ हर बार नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी काफी सारे रूल्स रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है। लेकिन सोचने के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सोचने के लिए कोई नियम नहीं है, कोर्ट के लॉस नहीं है, कोई पुलिस या आर्मी कोई रोक नहीं सकता। तो कहने का मतलब मेरे मन में जिस प्रकार के विचार मैं चाहूं, उस प्रकार के विचार करने की फ्रीडम मुझे है, आपको भी है। तो क्यों ना हम अच्छे विचार करें हमेशा। अभी अच्छे विचार करने के लिए कौन हमें बाधा डाल सकता है या कौन हमें रोक सकता है? कोई नहीं, हम खुद ही रोकते हैं अपने मन को, हम खुद ही नेगेटिव विचार करते हैं। तो अभी आप बताइए, अगर आपको इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, आपको क्या जरूरी, क्या क्या चाहिए? क्या आपको एक बहुत अच्छा पार्टी में होना बहुत जरूरी है, आपको खुश फील होने, खुश रहने के लिए या खुशी का अनुभव करने के लिए, या आपको कोई एक वर्ल्ड टूर पर निकलना है या एक ट्रिप में जाना है ताकि आप खुश रह सके, या क्या ऐसा है कि आपको कोई अच्छा डिनर पे जाना चाहिए फ्रेंड्स के साथ तभी आप खुश रह सकेंगे, या आपको एक बहुत अच्छा समुन्दर किनारे पर बैठ के वहाँ का बहुत ब्यूटीफुल ब्रीज, कूल ब्रीज अनुभव करना है तभी आप खुश रह सकेंगे, तभी आप खुशी मना सकेंगे, या बहुत अच्छा लग्जूरियस सेटअप चाहिए और बहुत अच्छे ओबीडियंट लोग चाहिए तभी आप खुशी का अनुभव कर सकते हैं। अभी आप बताइए, आप कब खुश हो सकते हैं? आपको खुशी का अनुभव करने के लिए इनमें से किन किन चीजों की जरूरत है, क्या कहेंगे? एक्चुअली अगर आप देखें तो खुशी का अनुभव करने के लिए हैप्पी थॉट्स की जरूरत है, खुशियों भरी विचार चाहिए, खुशियों का विचार या हैप्पी थॉट्स यू नीड टू क्रिएट इन योर माइंड टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। तो किस प्रकार के खुशियों के विचार आप क्रिएट कर सकते हैं? आप सोचते हैं कि हमारे सामने या आसपास में बहुत हंगामा है, शोर है, या बहुत डिस्टर्बिंग सीन्स है, या बहुत डिस्टर्बिंग लोग हैं, हमें ट्रबल दे रहे हैं, लेकिन वो सब बाहर है, लेकिन आपके मन के अंदर जो विचार चलते हैं उस पर तो आपको पूरा अधिकार है या कंट्रोल है, या आपके पास फ्रीडम है, चॉइस है आपके पास, आप खुद ही तो क्रिएट करते हैं आपके मन के अंदर के विचार। तो आप अभी भी क्रिएट कर सकते हैं, तो आप क्रिएट कीजिए कि लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। क्रिएट पहले तो आप मन में क्रिएट करेंगे, फिर बाद में आप सच में आपका लाइफ भी ब्यूटीफुल हो जाएगा। आप सोच लीजिए कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन वो बिल्डिंग फिजिकली कंस्ट्रक्शन करने से पहले क्या होता है, मन में कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, पहले मन में तो कंस्ट्रक्ट करेंगे, मन में तो विजुअलाइज करेंगे, मन में ऐसा विचार लाएंगे कि मुझे ऐसा बिल्डिंग बनानी है ना। पहले तो इट ऑल स्टार्ट्स विद द थॉट, तो पहले थॉट क्रिएट करेंगे फिर बाद में बिल्डिंग बनेगा। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बनने के बाद आप सोचेंगे कि हाँ अभी बिल्डिंग बन गया, हाँ अभी मुझे ऐसा बिल्डिंग चाहिए, नहीं, पहले आप थॉट क्रिएट करेंगे। माना कोई भी प्रोसेस के लिए शुरू शुरुआत कहाँ से होता है, बिगिनिंग पॉइंट कहाँ है, आपके विचार ही बिगिनिंग पॉइंट है। तो अगर आप मन में खुशियों का विचार क्रिएट करते हैं, हैप्पी थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो वहां से लेके प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर आपका लाइफ भी ब्यूटीफुल बन जाता है। और एल्स आप ऐसा भी क्रिएट कर सकते हैं, आई एंजॉय एवरी मोमेंट, आई एम हैप्पी, है ना, आई कीप स्माइलिंग ऑलवेज एंड हैप्पीनेस इज माय ट्रेजर। तो इस प्रकार के विचार आप खुद ही क्रिएट करते रहेंगे, बार बार क्रिएट करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तभी अनुभव हो सकेगा, अनुभव कर सकेंगे, नहीं तो नहीं। आज तक हम सोचते थे अगर कोई हमें अप्रिशिएट करते हैं, या मुझे कोई पसंद करते हैं, मुझे कोई रेस्पेक्ट देते हैं, मुझे कोई सहयोग देते हैं, तभी मैं अच्छा फील करती। जरूरी नहीं है, इन सबके बावजूद भी या इन सबके बगैर भी हम खुश रह सकते हैं, हम खुद ही खुशियों के विचार क्रिएट कर। तो ये आप अभी कोशिश करके देख लीजिएगा कि कैसे आप, माना ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो जाएगा, लेकिन जैसे हम कोई अभी साइकिल अगर सीखना है तो एक दिन में चढ़ते ही हम साइकिल चलाना सीख लेंगे क्या? थोड़ा तो प्रैक्टिस चाहिए हमें, एक बार दो तीन बार गिरेंगे उठेंगे फिर चलाएंगे फिर हमें उस पर मास्टरी आएगी। तो इसी प्रकार आप बार बार अच्छे थॉट्स क्रिएट करने का प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप देखिए उसका रिजल्ट क्या होगा, फिर आप बहुत अच्छा फील करते रहेंगे। तो इसीलिए इस दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट स्किल अगर कुछ है, इट इज द आर्ट ऑफ थिंकिंग। अगर कोई व्यक्ति को अच्छा सोचने का ये स्किल अगर आ जाए, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में रह सकता है, खुश रह सकता है, उनको कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा कोई चीजों की, माना डिपेंड खुशी मनाने के लिए, खुशी अनुभव करने के लिए उनको कोई चीज का, कोई व्यक्ति का, कोई सिचुएशन का डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। ही नोस टू क्रिएट हिज ओन हैप्पीनेस। तो इसीलिए तो आर्ट ऑफ थिंकिंग जो है, सोचने की कला, ये बहुत जरूरी है। आज तक हमने कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस भाषा में बोलना है, ये सब कुछ हमने बचपन से सीखा। कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है, ये भी हमने सीखा। मोबाइल कैसे चलाना है, कंप्यूटर कैसे चलाना है, कोई गैजेट्स कैसे चलाना है, खाना कैसे बनाना है, सफाई कैसे करना है, ये सब हमने सीखा है ना, सिखाया है हम लोगों को। तो क्या किसी ने आज तक आपको कैसे सोचना है ये किसी ने सिखाया? कभी आपने सीखने की कोशिश की? कभी आपने इस पर ध्यान दिया? जरा आप सोचें। तो सोचने की कला बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या सोचते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं, किस क्वालिटी के विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही हमारा मूड को डिसाइड करता है। तो इसीलिए अब हम देखेंगे कि मूड रिपेयर हम कैसे करें। तो उसके लिए मैं कुछ सॉफ्ट टूल्स आपको प्रेजेंट करना चाहती हूँ, ताकि आप इन सब चीजों को अपने पास हमेशा रखें ये सॉफ्ट टूल्स को, ताकि जब भी आपका मन या मूड कभी भी ऊपर नीचे हो जाए तो आप इन सॉफ्ट टूल से अपने मूड को खुद ही रिपेयर कर सके। तो पहला है कि सी द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ। तो हमेशा जो ब्राइटर साइड है, जो पॉजिटिव साइड है, जो प्रॉफिटेबल साइड है, वही देखना चाहिए, वही देखने का एक प्रैक्टिस होना चाहिए। और दूसरा है चेक एंड चेंज, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में सुनेंगे। और तीसरा है हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फोर्थ वन है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, और फिफ्थ वन है स्पिरिचुअल नॉलेज एंड मेडिटेशन। तो ये पांच सॉफ्ट टूल्स हैं जिससे हम अपने मूड को बहुत सहज रूप से ठीक कर सकते हैं। तो पहला जो है कि सी द ब्राइटर साइड ऑफ योर लाइफ। नो इवेंट इन लाइफ इज गुड और बैड बाय इटसेल्फ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट देम। कोई भी दृश्य या घटना जो है वो अपने आप से अच्छा या बुरा नहीं होता, हम जिस प्रकार से देखते हैं तो वैसे ही हम फील करते हैं। तो हम टैग लगाते हैं कोई घटना को, अपने आप ही अपने आप का ही कोई टैग नहीं होता, हम टैग लगाते जाते हैं। कोई सेम सिचुएशन को कोई एक व्यक्ति बहुत अच्छा कह सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को वो बहुत बुरा भी दिख सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर विजन एंड नॉट ऑन दी सिचुएशन। तो हम इसका एक लाइव एग्जाम्पल हम देखें, आप सब जानते होंगे भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी को, ये बहुत बड़े स्कॉलर थे एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एट वाराणसी एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। तो ये जब यूनिवर्सिटी इनको बनाना था, माना उनको कंस्ट्रक्शन करना था, सो ही वॉज इन नीड ऑफ फंड्स, तो उनको बहुत फंड्स चाहिए था, तो इसलिए वो पूरे इंडिया में सब जगह ट्रैवल करके सबसे उन्होंने फंड्स रेस किया। तो ऐसे ट्रैवल करते करते वो हैदराबाद निजाम के पास भी आए, ये सच्ची घटना है। तो वो निजाम के पास आए और उन दिनों में निजाम इतने आसानी से सबसे नहीं मिलते थे, लेकिन ये बहुत बड़े स्कॉलर थे तो इसलिए इनको दरबार में बुलाया और इन्होंने पूछा निजाम से कि हमें ऐसा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनानी है तो आप इसके लिए हमें मदद दीजिए। तो निजाम को बहुत गुस्सा आया और उनको लगा कि मैं क्यों दूं, इसके लिए मुझे क्यों पूछा जा रहा है। तो उनको बहुत गुस्सा आया और अपना गुस्से पर उनको कंट्रोल नहीं था, तो उन्होंने अपना शूज निकाला और मदन मोहन मालवीय जी पर फेंक दी। लेकिन मालवीय जी बिल्कुल गुस्से नहीं हुए, उन्होंने शूज को अपने हाथ से पकड़ लिया और बिल्कुल कुछ बात किए बगैर वो पैलेस से बाहर आ गए। पैलेस से बाहर आए और बाहर एक बहुत बड़ा सर्कल था, वहां पे खड़े हो गए और वहां पे चिल्लाने लगे, माने जोर से आवाज करने लगे, कहने लगे कि निजाम के शूज आर फॉर ऑक्शन, जो चाहे खरीद सकते हैं। तो ये जो न्यूज है तो निजाम तक भी पहुंच गया। एक्चुअली क्या है, आजकल भी अगर हम देखें लोग सेलिब्रिटीज के पर्सनल बिलोंगिंग्स जो चीजें होती हैं उनको देखने का, छूने का या पाने का या खरीदने का बहुत शौक रखते हैं, ऐसा एक क्रेज रहता है लोगों में। तो उन दिनों में भी निजाम इतने आसानी से लोगों से नहीं मिलते थे, तो लोगों के मन के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, तो जरा हम भी देखें कि निजाम के शूज किस प्रकार के है, अगर हो सके तो हम भी खरीद ले, हम भी पहन ले। तो इस भावना से बहुत लोग उधर इकट्ठे हो गए। तो ये न्यूज निजाम तक पहुंच गया और निजाम आए और माना निजाम को पहुंच गया और उन्होंने अपने एक सेवक को बुलाया और कहा, एक बहुत बड़ा पूरा बैग भर के उन्होंने पैसा दिया और कहा कि जाओ ये पैसा दे करके मेरे शूज को खरीद के ले आओ। निजाम ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उनको लगा मेरे इस राज्य में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इतना रिच है जो मेरे शूज को खरीद कर सकता है? इतना पैसा किसके पास है? क्योंकि निजाम के शूज कोई ऑर्डिनरी शूज नहीं होते, वो सारे गोल्डन वर्क है, उसमें डायमंड से, पर्ल से, बहुत सारे वैल्यूबल ज्वेल्स है उसके अंदर। तो उनको लगा लोगों को इसकी कीमत क्या पता, अगर वो बहुत सस्ते में 100-200 रुपीस में खरीद ले तो उनका प्रेस्टीज क्या हो जाएगा, बहुत कम माना जाएगा। तो इसीलिए उनको लगा कि लोगों को पता तो लगे कि मेरे शूज कितने वैल्यूबल है, इसीलिए उन्होंने खुद ही बहुत ज्यादा पैसा दे करके, तो उन्होंने अपना ही शूज किसी माना अपने ही सेवक से द्वारा खरीदा। यहाँ तो मालविया जी को पैसा ही चाहिए था और उनको तो पैसा मिल गया। अभी आप सोचिए, अगर आप लोगों में से या मैं हम लोगों में से कोई मालविया जी के स्थान पर होते तो क्या सोचते? क्योंकि ये सिचुएशन जो था वो कोई पॉजिटिव सिचुएशन तो नहीं था। उनका इंसल्ट हुआ सभा में और उन पर शूज फेंका गया, तो भी उन्होंने उल्टा गुस्सा नहीं किया, ना कि डिस्टर्ब हुए। वो तो ऐसा भी कह सकते थे, मैं थोड़ी ना अपने लिए पूछने आया हूँ, मैं तो कोई डेवलपमेंटल वर्क करना चाहता हूँ, सबके भलाई के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं माना पूछने आया। अगर नहीं देना है तो नहीं देना है, इसीलिए चिल्लाने की क्यों जरूरत है, क्या दरकार है? तो ऐसा यूजली कोई दूसरे होते तो ऐसा ही सोचते, लेकिन मालविया जी बहुत पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा नेगेटिव सिचुएशन में भी बहुत पॉजिटिव सोचा और उस नेगेटिव सिचुएशन का भी उन्होंने पूरी रीति से एनकैश किया। तो आप सोचिए, अगर हमारे विचार अच्छे हैं, पॉजिटिव है, तो हर नेगेटिव सिचुएशन में भी हमें पॉजिटिव साइड जरूर दिखाई देता है। पॉजिटिव थॉट्स हेल्प अस टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ ऑल द सिचुएशंस। तो इसलिए हमारे विचार बहुत अच्छे होने चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं एक और सिचुएशन आपके सामने देना चाहती हूँ, आप बताइए, इफ पीपल आर टॉकिंग बिहाइंड यू, हाउ कैन यू थिंक पॉजिटिव? अगर आपके बारे में लोग आपके पीछे बातें कर रहे हैं, ये तो कॉमन सिचुएशन है, हर एक अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करता है, तो आप क्या फील उस सिचुएशन में, पॉजिटिव हम कैसे सोच सकते हैं? आप बताइए, जरा सोचिए, कोई आपके पीछे बात कर रहा है तो आप पॉजिटिव कैसे सोचेंगे? तो इट मींस दैट यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ देम। तो इसका मतलब वो पीछे बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप उनसे आगे हैं। तो आप आगे हैं तो दुख किस बात की फिर, तो खुश होना चाहिए ना, आप ऑलरेडी आगे हैं, तो इसीलिए खुशी मनाइए, कीप मूविंग फॉरवर्ड। अगर जो बातें कर रहे हैं वो अगर आपसे आगे होते तो फिर तो वो आपके सामने से बात करते, आपके मुख पर बोलते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते कि भाई आप ऐसा करते हो, ये ठीक नहीं, ये वो ठीक नहीं, ऐसा सामने से बोल सकते थे, वो हिम्मत रखेंगे। लेकिन जो आपसे पीछे है वो तो पीछे ही बात करेंगे, आपके सामने आके कैसे बात करेंगे? तो इसीलिए पीछे बातें करने वालों के ऊपर आप ज्यादा नहीं सोचे, क्योंकि वो ऑलरेडी पीछे है और आप ऑलरेडी उनसे बहुत आगे है। आप आगे निकल जाइए, नहीं पीछे मुड़िए, अपना मूड को खराब मत कीजिए, है ना? तो यू हैव टू मूव टन्स ऑफ डर्ट टू गेट एन आउंस ऑफ गोल्ड, है ना? जब सोना इन टनल्स से निकाला जाता है, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि जब खोदते हैं बहुत डीप खोदना पड़ता है, कई किलोमीटर्स तक खोदना पड़ता है, और जब खोदते हैं तो क्या निकलता है, इतना मिट्टी है, डस्ट है, मडी वाटर है, कई सारे केमिकल्स निकलते हैं, गैसेस निकलते हैं, तो कितनी सब नेगेटिव चीजें निकलते हैं। फिर भी लोग इतनी कोशिश करते हैं, क्यों? उनके आंखों के सामने डस्ट है, मिट्टी है, सब काली काली चीजें माना है, लेकिन उनके मन के पर्दे पर क्या दिखाई दे रहा है? गोल्ड दिखाई दे रहा है। इसीलिए दैट ड्राइव्स देम इनटू एक्शन, वो उनको एनर्जी देता है, माना उनके मन के पर्दे पर गोल्ड दिखाई दे रहा है, और वो उनको शक्ति देता है कि भाई और खोदो, और खोदो, मिलेगा। वो और एनर्जेटिक होके खोदेंगे, नहीं तो आंखों के सामने तो मिट्टी दिख रही है, फिर भी एनर्जी कहाँ से है? तो कहने का मतलब, तो हमारे आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा है वो ज्यादा हमें इम्पैक्ट नहीं करता, हमारे मन के पर्दे पर हम क्या देख रहे हैं वही हमें ज्यादा प्रभावित करता है। और अपने मन के स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है, जो मैं खुद प्रोजेक्ट करती वही दिखाई देता, और उसका कंट्रोल रिमोट मेरे ही हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। मेरे आंखों के सामने जो चीज दिखाई देता है उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मन के पर्दे पर जो दिखाई देता है उस पर तो मेरा कंट्रोल है ना। तो इसीलिए अच्छी चीजें प्रोजेक्ट कीजिए। अभी देखिए, एक वाइट फ्लावर दिखाई दे रहा है लेकिन वाइट बैकग्राउंड पर। अभी देखिए, सेम वाइट फ्लावर है लेकिन ब्लैक बैकग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। तो अभी कितना हाईलाइट होके दिखाई दे रहा है ना, प्रोमिनेंट होके दिखाई देता है। ऐसे ही जब नेगेटिव चीजें या नेगेटिव बातें करते हैं लोग या नेगेटिव सिचुएशंस है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा बैकड्रॉप का काम करता है, ताकि हमारे सारे पॉजिटिव क्वालिटीज अच्छी रीति से हाईलाइट हो जाता है। इसीलिए नेगेटिव सिचुएशंस कोई बुरे नहीं है, गलत नहीं है, इट्स ओके। ये हमारा बैकड्रॉप का काम कर रहा है। अगर आप अपने सोच को इस प्रकार से बदल देते हैं, आप देखिए ना, आपका मूड भी इंस्टेंटली बदल जाता है। तो नेगेटिव सिचुएशन एक्ट एज बैकड्रॉप टू हाईलाइट आवर पॉजिटिव क्वालिटीज। तो पीपल एंड सिचुएशंस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे वी फील, दे आर ओनली द स्टिमुलस। जो लोग हैं या सिचुएशन से, वो मेरे मूड के लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो केवल स्टिमुलस है। बट आवर रेस्पॉन्सेस आर द थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर विच वी चूज एंड क्रिएट। अब मैं क्या चूज करती हूँ अपना ना रेस्पॉन्स के रूप में, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उस व्यक्ति के ऊपर। तो मैं एक सिचुएशन आपको एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहती हूँ। तो एक पार्टी चल रहा था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, और एक व्यक्ति अपना हाथ में खाना लेके जा रहा था, तो सडनली गिर गया उनके हाथ से प्लेट, गिरते गिरते तीन लोगों के ड्रेस पर गिर गया, तो तीनों लोगों का ड्रेस खराब हो गया। तो एक व्यक्ति कहता है, छोड़ो ना यार, कोई हर्जा नहीं, इतना अच्छा लाइटिंग है, म्यूजिक है, गाना है, इतना अच्छा माहौल है, ऐसा पार्टी रोज रोज थोड़ी ना होता है, कोई हर्जा नहीं, छोड़ो, चलो, आपने इंटेंशनली थोड़ी ना किया है, हो जाता है कभी कभी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम करके वो पार्टी को एंजॉय करने लग पड़ता है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को तो बहुत गुस्सा आता है, उनको लगता है, वो चिल्लाना शुरू करता है, आपको इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, इतना भी अकल नहीं है, ऐसे कैसे गिरा दिया आपने, मेरा इतना कॉस्टली ड्रेस है, खराब कर दिया, मूड खराब कर दिया आपने, ऐसा करके वो गुस्सा करता है। और तीसरा व्यक्ति, उनको तो उनके वाइफ ने एनिवर्सरी पर गिफ्ट दिया था वो ड्रेस, और उसी दिन पहली बार वो पहन के आया था, वो ड्रेस ऐसा खराब हो गया जो कभी दोबारा पहन ही ना सके, ऐसा खराब हो गया, तो उनको बहुत बुरा फील होता है। ही स्टार्ट्स फीलिंग वेरी सैड कि मेरा ड्रेस खराब हो गया। अभी देखिए, तीनों लोगों का ड्रेस खराब हुआ है और तीनों का मूड अलग अलग है, तीनों का रेस्पॉन्स अलग है। अब तीनों का रेस्पॉन्स अलग क्यों है, जबकि सिचुएशन तीनों के सामने सेम है? जो गुस्सा करने वाला व्यक्ति क्या कहता है, गुस्सा उनको क्यों आया, क्योंकि सामने वाले ने अपना प्लेट का खाना गिरा दिया, खराब कर दिया ड्रेस, इसीलिए उनको गुस्सा आया। लेकिन एक्चुअली उनका गुस्से का कारण क्या है? उन्होंने अपने मन में गुस्से के विचार क्रिएट किए, इसीलिए गुस्सा आया। अगर गुस्सा ही आना था, अगर सामने वाला व्यक्ति ही कारण था, तो सबको एक समान गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन सबको एक समान गुस्सा नहीं आया। तो इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी रीजन नहीं है। तो अपना ही मन, अपना ही विचार अपने मूड के लिए कारण बनता है। तो इसलिए अपने विचार तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, अपने ही हाथ में है ना। तो चॉइस हमारे हाथ में है। जब आप दुकान में जाएंगे, कोई पेन खरीदने जाएंगे, 10 रुपये का पेन है, आप 10 रुपया दिया और दुकानदार ने कोई भी ऐसा एक पेन रैंडमली सेलेक्ट करके आपके आपको दे दिया, क्या आप ऐसे ही ले लेंगे पेन को? आप बताएंगे ना कि नहीं नहीं वो कलर वाला पेन चाहिए, ये कलर वाला पेन चाहिए, ऐसा डिजाइन वाला, ये ब्रांड वाला चाहिए। आप चूज करेंगे ना, चॉइस करेंगे ना। आप एक 10 रुपये का ही पेन है, ज्यादा कोई महंगा पेन नहीं है, लेकिन 10 रुपये के पेन के लिए भी आप खुद चूज करते हैं, चॉइस करते हैं, तो अपने थॉट्स क्यों नहीं चूज कर सकते? अच्छे विचार क्यों नहीं चूज कर सकते? हैप्पी थॉट्स क्यों नहीं चूज कर सकते? आपको किसने रोका है? किसी ने रोका तो नहीं है, है ना? लेकिन हम भूल गए। तो व्हेनेवर अ सिचुएशन कम्स, वी यूजुअली थिंक एंड वी रिएक्ट, बट एक्चुअली माना किसी ने हम पर गुस्सा किया तो हम भी उल्टा रिएक्ट करते हैं, माना रिएक्टिंग द सेम थिंग। लेकिन होना क्या चाहिए? वी हैव टू रीथिंक एंड एक्ट बेस्ड ऑन आवर ओन प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन आवर वैल्यू सिस्टम, है ना? तो ये होना चाहिए। हम रीथिंक नहीं करते, हम रिएक्ट कर देते, रिएक्ट कर देते। लेकिन आज से हम रीथिंक करेंगे और प्रॉपर रिस्पॉन्स हम देंगे। तो आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम अ नेगेटिव एनवायरनमेंट, इट इज नेसेसरी टू क्लीन योर माइंड। जैसे हम पूरे दिन भर बाहर आप काम कर रहे थे और फिर रात को घर आते हैं, तो क्या करते, सबसे पहला काम क्या करते? पहले जाके कपड़े बदलते हैं और यू नो वी टेक अ शावर, है ना? हम स्नान, फ्रेश हो जाते हैं ताकि हम फ्रेश फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। तो ये तो हम कर लेते हैं, कपड़ा वॉशिंग के लिए डाल देते हैं और हम खुद जाके फ्रेश हो जाते हैं, शरीर को भी स्नान से हम फ्रेश कर देते। लेकिन क्या मन फ्रेश हुआ? मन को क्लीन किया आपने? क्योंकि सारा दिन बाहर घूमे, कितने लोगों से मिले, क्या क्या देखा, उन सब चीजों का प्रभाव तो होता है, तो फिर वो सब तो क्लीन करना पड़ेगा, तो वो फिर कैसे क्लीन करें? तो बहुत जरूरी है अपने मन को भी क्लीन करना चाहिए। मेडिटेशन से अपना मन क्लीन हो जाता है। तो आगे के स्लाइड्स में हम सुनेंगे मेडिटेशन के बारे में। अच्छा, अभी सेकंड पॉइंट है चेक एंड चेंज। तो हमें अपने थॉट्स को चेक करना है, बार बार चेक करना है कि मेरे मन में किस प्रकार के, किस क्वालिटी के थॉट्स क्रिएट होते हैं। यूजुअली क्या होता, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं। Nearly 60% of the time a person lives in his past. Past के बारे में, जो already बीत चुका है उसके बारे में लोग सोचते रहते हैं, और 30% future के बारे में, planning के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा करना है, वैसे करना है, ये कैसा होगा, तो इसके बारे में सोचते रहते हैं, और केवल 5% present में रहते। Only 5%। तो आप जानते हैं अच्छे से, जो बीत चुका है वो तो अभी हम, we cannot travel back in time and change the things, है ना? हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या चेंज कर सकते हैं? आगे में ऐसा गलती हमसे ना हो, ऐसा अपना बिहेवियर को, थॉट पैटर्न को हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, लेकिन आगे के लिए हम ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें इन बातों का बहुत अच्छा ध्यान माना अटेंशन होना चाहिए, हमारे मन में किस क्वालिटी के थॉट्स क्रिएट होता है। इफ यू आर डिप्रेस्ड दैट मींस यू आर लिविंग इन द पास्ट, इफ यू आर एंग्शियस दैट मींस यू आर लिविंग इन द फ्यूचर, इफ यू आर एट पीस दैट मींस यू आर लिविंग इन प्रेजेंट। तो आप देखिए आपका मूड अभी कैसा है, आप प्रेजेंट में हैं, पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर कैसे। जैसे आप बाहर जाते हैं तो ऐसा ट्रैफिक जाम तो देखने को बहुत बार मिलता है, ये तो आप जानते ही है। क्या आप थॉट्स जाम के बारे में भी जानते हैं? ऐसे मन के अंदर भी बहुत थॉट्स, यू नो, टू मेनी थॉट्स फ्रॉम ऑल रैंडम डायरेक्शंस आ जाते हैं, तो मन भी जैसे हैंग हो जाता है, रुक जाता है, अभी समझ में नहीं आता क्या करे कैसे करे, जैसे मन ब्लैंक हो जाता है। कई बार थॉट्स इतना जाम हो जाते हैं, पता नहीं चलता, समझ में नहीं आता क्या करें। तो जैसे रोड पर ऐसा ट्रैफिक जाम ना हो जाए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऐसा ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक लाइट्स बहुत रोड्स पर वो इंस्टॉल करते हैं। तो उसका काम है ताकि ट्रैफिक को प्रॉपर रीति से चैनलाइज कर। तो सिमिलरली हमारे मन के विचारों को भी हमें इसी प्रकार से चैनलाइज करना है। जैसे रेड थॉट, रेड लाइट ग्लो होता है, इसका मतलब है स्टॉप। तो ऐसे हम भी ऐसा ही ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक टाइम हमें प्रैक्टिस करना है। तो हम क्या करते हैं आश्रम में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हम हर घंटे में एक मिनट के लिए ऐसा ट्रैफिक कंट्रोल टाइम ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं। माना एक मिनट के लिए हम अपने विचारों को स्टॉप करते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग विचार चल रहे थे उसको स्टॉप करते हैं, और सेकेंड हम पॉज करते, जो भी प्रेजेंट काम हम कर रहे थे वहां से थोड़े टाइम के लिए, एक मिनट के लिए हम पॉज करते हैं, और तीसरा है हम पॉजिटिव थॉट्स करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव थॉट्स करना बंद करते हैं, जो प्रेजेंट एक्टिविटी है उसको पॉज करते हैं, फिर तीसरा है अच्छे विचार डिलिबरेटली या पर्पसफुली कॉन्शियसली हम अच्छे विचार एक मिनट के लिए करते हैं, ताकि अगर हमारा थॉट्स का ट्रैफिक आउट ऑफ द ट्रैक अगर है तो फिर से ऑन ट्रैक आ जाए। तो ऐसा अभ्यास आप भी कर सकते हैं। ऐसे सिमिलरली यू कैन प्लान योर मूड जस्ट लाइक यू प्लान योर एंटायर डे। ऐसे जैसे रोज आप प्लान करते कि मुझे ये काम करना है, ये फिनिश कर लेना है, ये अपॉइंटमेंट्स है, ऐसे बहुत सारी चीजें आप प्लान करते हैं, तो वो सारे जो काम काज है उसका तो आप प्लानिंग करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं। क्या अपने मूड का भी प्लानिंग करते हैं कभी? आज से आप करिएगा, अपने डायरी में नोट कर दीजिएगा, हर एक दिन के लिए लिख दीजिएगा कि आज पूरा दिन मैं इस प्रकार का मूड रखूंगा। जैसे कि इसमें है कि आई विल बी हैप्पी नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई विल हेल्प अदर्स टू फील, टू मेक देम फील वेरी इजी, आई विल टॉक वेरी स्वीटली सॉफ्टली विद एवरीवन, है ना। तो इस प्रकार से आप अपने लिए कोई एक प्लान बना दीजिए। दिन का जो शुरुआत होता है तभी ये सेटिंग प्रोग्रामिंग कर दीजिए अपने मन में कि मुझे सारा दिन इसी प्रकार मूड रखना है, और बीच बीच में चेक करते रहिए कि क्या मैं अपने प्लान के हिसाब से चल रहा, मेरा मूड उसी हिसाब से है। तो जितना आप चेक करते रहेंगे, बार बार चेंज करते रहेंगे, फिर देखना आपका मूड कितना अच्छा। तो उसको आपको असिस्ट करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत सुंदर वेबसाइट है जस्ट अ मिनट। आप गूगल में टाइप कर सकते हैं जस्ट अ मिनट ब्रह्मा कुमारीज। तो जस्ट अ मिनट मेडिटेशन हेल्प्स अस टू रिलैक्स, रीफोकस एंड री एनर्जाइज इन जस्ट अ मिनट। तो एक मिनट में कैसे हम रिलैक्स हो जाए, अपने को फिर से रिफोकस करें, हम री एनर्जाइज करें, तो इसके लिए एक बहुत सुंदर टूल एक दिया हुआ है. सो विथ फोकस एंड रेगुलर प्रैक्टिस वी कैन रीबिल्ड अवर मेंटल मसल्स एंड बिकम द मास्टर ऑफ आवर माइंड वंस अगेन. तो हम इस प्रकार के प्रैक्टिस से हम अपने माइंड को या माइंड मसल्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. जैसे हम रोज एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी फिट हो जाता है, इसी प्रकार हम रेगुलरली अपने विचारों को प्रॉपर चैनलाइज करने का हम सीख ले या रेगुलर ये 1 मिनट मेडिटेशन हम करते रहे तो हमारा माइंड भी फिट हो जाता है. तो इस जस्ट अ मिनट वेबसाइट में राइट हैंड टॉप कॉर्नर में एक बहुत सुंदर टूल दिया हुआ है जिसका नाम है जैम पल्स. इट्स अ ऑनलाइन टूल दैट हेल्प्स यू रिमेम्बर टू टेक जस्ट अ मिनट फॉर योरसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू आउट योर डे. दिस इज द प्रैक्टिस दैट एनेबल्स जस्ट अ मिनट टू मेक अ रियल एंड पॉजिटिव डिफरेंस इन लाइफ. तो वो टूल जो राइट हैंड टॉप कॉर्नर में दिख रहा है आप इसको ऑन कीजिए और उस सेटिंग्स में आप आवरली बेसिस या जिस प्रकार से आपको चाहिए आप उसमें सेटिंग्स में आप क्लिक कर सकते हैं, माना टिक कर सकते हैं और फिर वो टूल आपको एवरी आवर और या तो आपके सेटिंग के अनुसार आपको रिमाइंड करता रहेगा. उसमें काफी सारे 1 मिनट मेडिटेशन कमेंट्रीज हैं, बहुत सुंदर हैं. अब जरूर इसको ट्राई कीजिएगा अपने मोबाइल में. कि हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, तो हार्मनी इन रिलेशनशिप्स इसको कैसे हम अनुभव करें. तो हार्मनी इन रिलेशनशिप्स जैसे कहा जाता है बेसिक्स ऑफ रिलेशनशिप्स. So in relationships, we always want love, trust, respect, happiness. Relationship is not about wanting. It is about giving. So relationship hamesha dene se banta hai, relationship. So dena kya hai? Dena hai? Ya cheeze deni hai? Ya kya dena hai? So dena bhi do level ka hai. तो एक है फिजिकल लेवल और दूसरा है इमोशनल लेवल. तो जिस प्रकार से हम देंगे उसी प्रकार से हमें रिटर्न भी मिलेगा. अगर कंफर्ट्स देती हूँ, फैसिलिटीज देती हूँ, गिफ्ट्स देती हूँ तो मुझे भी इन रिटर्न में फिजिकली सर्विस मिल सकता है. अगर मैं इमोशनली देती हूँ, प्यार देती हूँ, रेस्पेक्ट देती हूँ या सहयोग देती हूँ, क्षमा देती करती हूँ या सुख देती हूँ तो फिर मुझे भी इन रिटर्न में वही मिलेगा. इफ आई वॉन्ट टू होल्ड अ रिलेशनशिप, इफ आई वॉन्ट टू होल्ड अ रिलेशनशिप दैट मीन्स आई हैव टू स्पेंड एनर्जी, है ना. तो मुझे चाहिए तो मुझे ही एनर्जी स्पेंड करना होगा, तो इसीलिए मुझे ही देना होगा. अगर उनको चाहिए वो भी करेंगे, अगर मुझे चाहिए तो मुझे ही करना पड़ेगा. तो विनिंग अ पर्सन्स हार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग एन आर्गुमेंट. तो हमेशा हम क्या करते हैं संबंधों में, कई बार अपने को राइट प्रूव करने में ही इतना बिजी हो जाते हैं, अपने बात मनवाने के लिए, अपने बात सिद्ध करने के लिए कई बार हम क्या करते हैं, हम वो रिलेशनशिप को ही खो देते हैं. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. सो विनिंग एन आर्गुमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट विनिंग द हार्ट इज इम्पॉर्टेंट. उनके दिल को जीतना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ना कि आर्गुमेंट को जीतना है, ना कि टू प्रूव माई सेल्फ राइट. तो इसलिए हमेशा इस पर भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है. इफ देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन एनी रिलेशनशिप द प्रॉब्लम इज नॉट विद देम एंड द प्रॉब्लम इज नॉट बिटवीन अस but the problem is the way we are thinking and that is the only thing we can change. Jab bhi hamare sambandhon mein jab bhi conflict hai to problem unme nahi hai na, problem hum dono ke beech mein hai. Actually problem kahan pe hai, the way we think हमारे सोच में प्रॉब्लम, और केवल वही तो हम चेंज कर सकते हैं। आप सोचिए, हम दूसरे व्यक्ति को थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते। हम एट द मैक्सिमम क्या चेंज कर सकते हैं, केवल अपने ही मन के विचार चेंज कर सकते हैं। उतना ही तो हमारे पास कंट्रोल है। हमारे पास पूरी दुनिया का रिमोट कंट्रोल तो नहीं है ना, हम फिर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने मन के विचारों को चेंज करें। यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन इफ यू स्टॉप एवरी टाइम व्हेन समबडी सेज समथिंग नेगेटिव। लोग तो हमें कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे हमेशा, और हर बार कोई ना कोई हमें नेगेटिव बोले तो हम रुक जाए, उधर ही खड़े हो जाए, या हम अपना काम छोड़ दे, बुरा फील करें, तो हम कभी भी अपना डेस्टिनेशन कभी हम पहुंच ही नहीं सके। तो इसीलिए हमें उन सब बातों को अपने दिल पर नहीं लेना है, ना चित पर लेना है, केवल अच्छी बातें ही सेलेक्ट करके लेना है। जैसे खाने का प्लेट हमारे सामने है, हम थोड़ी ना सब कुछ जो प्लेट के अंदर है वो सब खा जाते हैं, नहीं, उसमें कई बार छिलका होता है, कई बार सीड्स होते हैं, कई बार चिल्ली है उसके अंदर, वो सब तो हम नहीं खाते। जो चीज नहीं खाया जाता उसको तो निकाल के साइड कर देते, और जो पसंद है, जो अच्छी चीजें है वही तो खाते। तो वी आर वेरी सेलेक्टिव, राइट, हम चूज कर करके लेते हैं हर चीज। तो सिमिलरली अपने विचारों को भी हम चूज करें, अप्रोप्रिएट विचारों को चूज करें। सो व्हाट अदर्स थिंक और टॉक अबाउट यू डजंट कंट्रीब्यूट टू योर प्रोग्रेस। दूसरे लोग आपके बारे में जो बातें करते हैं या आपके बारे में जो सोचते हैं, वो आपके प्रोग्रेस के लिए किसी भी प्रकार से वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता। फिर क्या करता है आपके प्रोग्रेस के लिए, फिर क्या कंट्रीब्यूट करता है? व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ ओनली हेल्प्स यू टू प्रोग्रेस इन लाइफ। तो आप अच्छा सोचिए, जैसे अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस प्रकार से अच्छी बातें सोचिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, यही तो आपके प्रोग्रेस के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो इस प्रकार से अच्छा सोचना, यू आर द ओनली योर एनिमी। हमारे लिए कोई दूसरा शत्रु तो है ही नहीं है इस दुनिया, हमारे नेगेटिव विचार ही हमारे शत्रु है, हमारे एनिमी है। तो इसीलिए हमें नेगेटिव विचारों से बच के रहना है, कभी मन में आने नहीं देना है। सो यू मस्ट फर्स्ट गेट अलोंग विथ योर सेल्फ बिफोर यू कैन गेट अलोंग विथ अदर्स। तो इसीलिए पहले अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करें। अगर आप अपने को प्यार कर सकते हैं, अपने को पसंद कर सकते हैं, इफ यू नो हाउ टू लव योरसेल्फ, इफ यू नो हाउ टू लाइक योरसेल्फ, इफ यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, देन यू कैन लव अदर्स आल्सो। तभी आप दूसरों को भी प्यार कर सकेंगे, रिस्पेक्ट दे सकेंगे, सहयोग दे सकेंगे, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए फर्स्ट गेट अलोंग विद योर ओन सेल्फ, अपने ही विचार अपने बारे में अच्छा कीजिए। तो हर एक इंसान में विशेषताओं को ही देखने का अभ्यास करना है, हमेशा हर एक के अंदर जो विशेषताएं हैं वही देखें, प्रोमिनेंटली, माना जो भी है उनके अंदर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। अगर आप नेगेटिव देखते हैं या आपको नेगेटिव ही दिखता है, तो इसका मतलब आपके मन के अंदर भी नेगेटिव ज्यादा भरा हुआ है, इसीलिए आपको दूसरों का नेगेटिव तुरंत दिखाई देता है। अगर आपके मन के अंदर बहुत पॉजिटिव बातें हैं, पॉजिटिव विचार है, तो नेचुरली आपको दूसरों के अंदर जो पॉजिटिव बातें है, उनकी विशेषताएं जो है वो तुरंत दिखाई देता है। तो इसलिए हर एक का पॉजिटिव साइड ही देखें, तभी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और फोर्थ वन है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये भी बहुत जरूरी है अपना मूड को अच्छा रखने के लिए, है ना। कई लोगों को एक छोटा सा केक का पीस मिलता है फिर भी वो बहुत खुश फील करते हैं ना। हैप्पी पीपल फोकस ऑन व्हाट दे हैव, उनके पास जो है उससे वो बहुत खुश है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ऑलमोस्ट पूरा 90% केक उनके हाथ में है, एक छोटा सा ही टुकड़ा नहीं है उनके पास, फिर भी वो अनहैप्पी। अनहैप्पी पीपल फोकस ऑन व्हाट इज मिसिंग, जो नहीं है उसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए वो जल्दी दुखी हो जाते हैं। लेकिन हैप्पी पीपल जो है वो जो ऑलरेडी उनके पास है उसी के बारे में वो सोचते रहते हैं, एंड दे स्टार्ट फीलिंग वेरी गुड अबाउट देमसेल्व्स। सो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है इट इज द बेस्ट एटीट्यूड। इसीलिए जो आपके पास है हाँ, तो उसके बारे में आप खुश फील कीजिए, अच्छा महसूस कीजिए कि हाँ इतना तो है ना मेरे पास सब कुछ, उस पर फोकस कीजिए, है ना। तो always count your blessings, not what you are missing. जो नहीं है उसके बारे में मत सोचिए, जो ऑलरेडी है आपके पास उसका इम्पोर्टेंस जानिए, समझ लीजिए और उसको एनहेंस कीजिए, उसको और डेवलप कीजिए, उसको प्रयोग में लाइए, तभी उन्नति के रास्ते पर चल सके, है ना। सो ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेवर व्हाट इज मिसिंग इन योर लाइफ। और फिफ्थ वन है स्पिरिचुअल नॉलेज एंड मेडिटेशन, ये भी बहुत जरूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है टू नो मोर अबाउट द इनर स्पिरिट एज वेल एज द सुपर स्पिरिट। इनर स्पिरिट एंड सुपर स्पिरिट के बारे में और ज्यादा जानना, इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, या हिंदी में हम कहते हैं आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। आत्मा के बारे में अध्ययन करना, इसको ही आध्यात्मिकता कहते हैं। और आत्मा और परमात्मा के बारे में अध्ययन करना दोनों है, तो हम दोनों के बारे में अभी सुनेंगे। तो इनर स्पिरिट माना क्या है, जब हम आईने में अपने आप को देखते हैं तो हमें ये शरीर दिखाई देता है, क्या हम इतना ही है क्या, नहीं, ये शरीर में है ना, इसमें मसल्स है, सेल्स है, बोन्स है, मस्कुलर स्केलेटन बॉडी है। तो साइंटिस्ट कहते हैं या डॉक्टर्स कहते हैं दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। अगर एक एक सेल भी अगर आप लेंगे उसको टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर सोचने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, एनालाइज करने की शक्ति नहीं है, लेकिन हम में है। और ये पूरा बॉडी बना हुआ है लिविंग सेल्स से, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देयर मस्ट बी सम अदर एंटिटी प्रेजेंट इन दिस बॉडी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शनिंग, दैट इज the function of thinking, analyzing, reasoning, decision making, है ना। तो इसका मतलब इस शरीर के अंदर कुछ ऐसा शक्ति है, कुछ ऐसी चीज है जिस कारण से हम सोच पाते हैं, निर्णय कर पाते हैं। और वो कौन सी शक्ति है, वो है आत्मा, जिसको हम कहते हैं a conscient being of energy, a soul, a point of light। अनेक अलग अलग भाषा में अलग अलग रूप से उनको रेफर किया जाता है, सोल, आत्मा, प्राण, शक्ति, बिंदु, ऐसे रेफर किया जाता है। तो वी आर, आई एम अ सोल, अ कॉन्शियंट बीइंग ऑफ एनर्जी लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। तो यहाँ बैठ के मैं आत्मा पूरा शरीर को मैं कंट्रोल करती हूँ। ये आत्मा जैसे कि एक डायमंड की तरह है, जैसे डायमंड बहुत छोटा है लेकिन डायमंड को रखने का जो बॉक्स है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन डायमंड के वजह से ही उस बॉक्स का वैल्यू है। बाय चांस डायमंड को हमने खो दिया, खाली बॉक्स को कौन लेगा? खाली बॉक्स का कोई वैल्यू नहीं है, कोई सेल वैल्यू नहीं है, कोई हम उसको सेल नहीं कर सकते। क्यों? उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब तक डायमंड था तब तक उस बॉक्स की जरूरत थी, डायमंड नहीं फिर बॉक्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो सिमिलरली हमारे इस शरीर के अंदर आत्मा जो है, चैतन्य शक्ति है, वही इम्पोर्टेंट है, वही डायमंड जैसा एंटिटी है। जब तक वो शरीर में है, इस शरीर को सब रेस्पेक्ट देते हैं, इस शरीर से हम काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है फिर इस शरीर को कोई रखना नहीं चाहते, इसको आइदर दे बर्न इट और दे बरी इट। तो इस शरीर का वैल्यू तब तक है जब तक आत्मा इसके अंदर है। तो मैं वो आत्मा हूँ, मैं ऐसा एक वैल्यूबल एंटिटी हूँ और मुझ आत्मा में बहुत सारे गुण है, शक्तियां है। तो ये जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सब क्वालिटीज हम हर एक आत्मा में है। शांति है, शक्ति है, प्रेम है, ज्ञान है, प्योरिटी है, खुशी है, प्यार है ना, ये सब गुण हमारे अंदर है, हर एक में है। और हमें अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें वो याद ही नहीं है। सबसे पहले मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसी बात का स्मृति नहीं रहती। इसीलिए यूजुअली मैं शब्द जब भी कहते हैं तो शरीर को ही रेफर करते हैं, और शरीर टेम्पररी है। तो इस शरीर के द्वारा जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो भी तो हमें टेम्पररी ही अनुभव होता है। अगर मैं एक आइसक्रीम खाती हूँ तो 10 मिनट्स एंजॉय करती हूँ, जैसे ही आइसक्रीम खत्म हो गया खुशी भी साथ साथ खत्म हो जाता है। हम कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं तो जब तक देख रहे हैं तब तक एंजॉय किया, जैसे मूवी खत्म आप घर आए फिर घर के वही मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को, उन्हीं चेहरों को देखा, वही मुख्य, वही लोग है, फिर वही मूड फिर खराब हो जाता है, या ऑफिस में फिर वही लोग है, वही काम है, वही माहौल है, फिर से मूड खराब हो जाता है। माना जो खुशी मिली थी वो टेम्पररी ही था, हमेशा नहीं, लेकिन आत्मा जो है वो अनादि अविनाशी है, और आत्मा के अंदर ये जो भी क्वालिटी है वो भी अनादि अविनाशी है। तो जितना हमारी स्मृति नेचुरल है तो उतना ये हमें नेचुरल ये सब गुण हम अनुभव कर सकते हैं। और सुपर स्पिरिट माना परमात्मा, जैसे मैं आत्मा एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे परमात्मा भी एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, लेकिन वो हम सब आत्माओं में से वो सुप्रीम है, सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। तो परमात्मा एक है, वो कोई देहधारी तो नहीं हो सकता। अगर कोई देहधारी होता परमात्मा तो क्वेश्चन उठता, क्या परमात्मा को मेल बॉडी होना चाहिए या फीमेल बॉडी होना चाहिए? परमात्मा कैसे दिखना चाहिए? क्या अफ्रीकन जैसे दिखना चाहिए या अमेरिकन जैसा दिखना चाहिए? परमात्मा फिर किस प्रकार का होना चाहिए, है ना? इस प्रकार का डिबेट चालू हो जाता फिर। लेकिन परमात्मा कोई देहधारी नहीं है, परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। परमात्मा एक है और हम सब उस एक के हैं, इसीलिए हम सब भी एक। तो इसी भावना जब हमारे मन में क्रिएट होता है तो हमारे बीच में एकता बनी रहती है सहज रूप से। फिर ये भाषण की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल की बात हो जाती है। बस ये बात समझने की है कि परमात्मा एक है और हम सब उनके बच्चे हैं, एक परिवार के हैं, इसीलिए हम सब एक हैं। और राजयोग मेडिटेशन, तो इट इज द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग द सेल्फ टू गॉड थ्रू द मीडियम ऑफ सिस्टमैटिक पॉजिटिव थॉट्स। तो मेडिटेशन जो है ये बहुत इजी है, ये कोई टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ इसके लिए हमें कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, मन में बहुत अच्छे विचार हमें क्रिएट करना है और उसी विचारों को विजुअलाइज करना है और तभी हमें बहुत अच्छा अनुभव होगा। हम इस सेशन के अभी और कुछ ही स्लाइड्स हैं, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे तो ये सब तो हमने जाना, लेकिन एक हम बदल जाते हैं, एक हमारा मूड बदल जाने से क्या फायदा है? बाकी सब तो ऐसे ही है, कोई गुस्से में है, कोई सैड फेस है, कोई किसका कैसा है, तो क्या फायदा? तो आप सोचते होंगे नहीं, अगर हमारा मूड बदल जाता है, हमारे आसपास के लोगों का भी मूड बदल सकते हैं, फिर वो इट इज लाइक अ चेन रिएक्शन, तो फिर सबका मूड बदल जाता है। तो रिमेम्बर, यू हैव द पावर टू चेंज योर एनवायरनमेंट। आपके पास केवल आपका ही मूड रिपेयर करने का ही एबिलिटी नहीं, लेकिन पूरे माहौल को बदलने की क्षमता है। इतनी ताकत हम हर एक में है, इतना पोटेंशियल है। क्या हम रियलाइज करते हैं? क्या हम इस पोटेंशियल को यूज करते हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी से हम यूज करना चालू करें, शुरू करें, है ना? स्पीड इज कैलकुलेटेड एज माइल्स पर आवर, है ना? हम सबके व्हीकल्स में स्पीडोमीटर तो होता ही है ना? इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज माइल्स पर आवर, लेकिन लाइफ इज कैलकुलेटेड एज स्माइल्स पर आवर। हम जितना स्माइल करते हैं उतना हमारा अच्छा माइलेज है ना? सैड से हमें ग्लैड तक पहुंचना है अभी, है? तो इसीलिए सो इंक्रीज योर माइलेज फॉर बेटर माइलेज। तो पूरा दिन हर क्षण मुस्कुराते रहिए, अपना मूड अच्छा बना के रखिएगा, फिर आपका जीवन भी बहुत सुंदर लगेगा। तो हम इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आपको नए साल की मुबारक देते हैं। तो वी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। तो
परेशान भी है, मूड क्लिनिक में आई और मेडिटेशन से मूड को बदले। तरीके जो बनाए आपको आप जैसा।
तो एक बी जोन एक ऐप है जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर मूड क्लिनिक है, जब भी आपको लगे कि मूड खराब है तो मूड क्लिनिक आपको मदद करता है, आपका मूड को एलिवेट करता है। तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और यूज कीजिएगा। इसमें और भी काफी सारे फैसिलिटीज से बहुत सारे हैं जो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू अवर brahmakumaris.com एंड awakening.in फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड आप हमारे टीवी चैनल्स हैं तो ये भी आप देख सकते हैं, इससे भी आपका मूड हमेशा बहुत अच्छा बनी रहेगी। तो हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मूड हमेशा अच्छा रहे, खुश रहे, आप हमेशा संतुष्ट रहे, हेल्दी रहे, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको ये मूड रिपेयर किट के सॉफ्ट टूल्स आपको हम प्रेजेंट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच.
थैंक यू दीदी.
अभी 2 मिनट हम सब मेडिटेशन करें.
जी.
सब सीधा बैठ जाइए. अपने हाथ में अगर कोई चीज है तो साइड में रख दीजिएगा. अभी आपको स्क्रीन पर जो लाइट दिख रही है उस पर अपने आंखों को फोकस कीजिएगा, उस पर अटेंशन दीजिए. और जो मेरी आवाज आपको सुनाई दे रहा है वो सुनिए और अपने मन में एक बार रिपीट कीजिए. ओम शांति. मैं अपने विचारों को, अपने ब्रकुटी के बीच में एकाग्र कर रही. जैसे 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 मेरा विचार एकाग्र होता है, मैं अपना निजी रूप को महसूस कर रही हूँ. हाँ, मैं ये शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ. मैं आत्मा अ पॉइंट ऑफ एनर्जी हूं. मैं आत्मा बहुत सूक्ष्म शाइनिंग एंड ब्राइट. मेरा मन अभी शांत है. आई एम पीसफुल नाउ. पीस इज माय ओरिजिनल क्वालिटी. शांति मेरा स्वधर्म है. शांति मेरा निजी गुण है. शांत रहना मुझे अच्छा लगता है. I enjoy these beautiful moments of silence. I feel very comfortable now, relaxed, feel at very ease.
Okay, hi karo sabhi, video chal raha hai.
Mera man bahut sheetal hai, prashant hai. I now connect myself to God, who is also a point of light. Paramatma, जो गुणों और शक्तियों का सागर है और उनसे शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मेरे अंदर आत्मविश्वास जागृत हो रहा है. I feel very energetic now and very powerful. I enjoy the warmth of God's love, मुझे बहुत सुखद अनुभव हो रहा है, अच्छा लग रहा है. इन्हीं ब्यूटीफुल मोमेंट्स एंड मेमोरीज के साथ हम फिर से अपने कार्य क्षेत्र पर वापस आएंगे. यस, आई फील वेरी रिफ्रेश्ड, रीएनर्जाइज्ड. ओम शांति शांति शांति. ओम शांति.
दीदी,
मैं समझती हूँ आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा. और तो ये मूड रिपेयर किट आप अपने पास हमेशा रखिएगा, और जब भी मूड थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो ये पॉइंट्स को यूज कीजिए और अपना मूड को खुद ही रिपेयर कर लीजिए और हमेशा अच्छे मूड में रहिए. Thank you so much for this wonderful opportunity to share few words with all of you. Thank you, Omsha.
Didi, आपका आज हमारे बीच में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत. और आप सभी भाई बहनों का भी आज हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत थैंक्स. और जैसा कि आज हमें दीदी ने बताया कि राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम खुद ही अपने मूड को जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं. एक ऐसा टूल है जिससे हम खुद के मूड को खुद ही रिपेयर कर सकते हैं. तो हमारे सभी सेंटर्स जो हैं हर सिटीज में अवेलेबल हैं आप सभी के लिए. तो आप सभी अगर राजयोग मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो अभी आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा जिसके थ्रू आप अपने नियर बाय एड्रेस को लेके आप हमारे सेंटर्स पे जा सकते हैं. और हमारे ये कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप सभी ले सकते हैं जाके. तो इसका लिंक जो है अभी चैट में आएगा, आप उससे अपने नियर बाय एड्रेस को देख सकते हैं. और हमारे सभी आगे आने वाले संडे टॉक में भी कनेक्ट होने के लिए एक व्हाट्सएप लिंक शेयर किया जाएगा जिसके थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आगे आने वाले सारे ऐसे ही बहुत अच्छे वंडरफुल टॉक्स को की डिटेल्स जो है वो आपको अवेलेबल कराई जा सके. तो आप सभी का आज के सेशन में हमारे साथ रहने के लिए, आने के लिए और कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक्स। ओम शांति।
ओम शांति।
थैंक यू।
ओम शांति। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। Hmm.